राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 सितंबर 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे सुजानगढ़ में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवरीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
बातें हम सुनते हैं उसमें योग की बड़ी महिमा है और ये अनुमान होता है पातंजल योग दर्शन का और पुराणों का बहुत प्रचार था ऐसा मालूम होता है। क्योंकि हर एक आदमी कहता है मन नहीं लगा तो क्या कुछ नहीं मन नहीं लगा तो कुछ नहीं ऐसी बात हर एक के पैदा होती एक व्यवहार में ऐसे खड़ा रहना है ऐसे बैठना है ऐसे चलना है ऐसे करना है ये बातें भी पुराणों की बातें बहुत मिलती है जिनका आज आदर नहीं है परंतु ये कहावत रूप से मिलती है। दरवाजे पर खड़े मत रहो चक्की पर मत बैठो दरवाजे पर मत बैठो झाड़ू के ऊपर मत बैठो ऐसी गांवों में बातें प्रचलित थी पहले अब वे मिट रही है पर शास्त्रों की बातें पुराणों में आया इसका वर्णन आया तो ऐसा मालूम होता है पुराणों का बहुत विस्तार था पठन पाठन था। बच्चा कहीं चट्टी फिर जाता है तो कहते नहीं नहीं यार नहीं ये मार्ग पर है नहीं रास्ते पर है चट्टी फिर जाए तो थोड़ा निकल जाएगा पाप लग जाएगा बसरी को मारते हो ना तुम झाड़ू से मारते हो तो इतने लकड़ियों से तुम्हारी मार पड़ेगी तुम ऐसा करोगे ऐसी कई बातें मैंने बचपन में सुनी आजकल बहुत कम हमने बचपन में जितनी सुनी है शिक्षा की बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें उतनी आजकल नहीं है अभी विशेष प्राय भूल गए हैं। उन बातों से मालूम होता है कि पुराणों का बहुत प्रचार था पद्म पुराण अग्नि में ऐसा लिखाता है जो पहले बड़ी बात मिलती है माताएं जानती है बूढ़ी बड़ी बात ऐसे जानती है कोई मर जाता है तो उसके यहाँ जाते हैं बैठने के लिए प्रस्तावना करने के लिए तो वहां पर बात कहते हैं ठीक वेदों की पूरी वेदों की बात अपनी होती है वही क्या रोना है अपने सुख के लिए और कुछ नहीं है और भी मर गया तो भी कर्मों की बात है कर्म जितना था उतना ही भोगना पड़ता है उतना ही भोगा है अब इतनी उम्र थी इसकी क्या चिंता करो इतना ही था कहीं तो कहते कर्माय नमः कर्मानुगमन ये शुद्ध और शुद्ध कोई फिरा नहीं है और ऐसा कर्म है कर्म अनुसार पर भोगना पड़ता और ये कहते हैं कि देखो संसार कुछ नहीं है स्वप्न है कल है राज नहीं इस वास्ते रोना नहीं चाहिए ये सभी मिटने वाला है कुछ है नहीं और भाई एक राम जी की मर्जी है, भगवान की जैसे मर्जी होती जैसा है, राम जी सीन गए तो शरण आए, क्या करें, किसके हाथ की बात है, राम जी की मर्जी है, उनकी मर्जी हो गई, ये बात है। तो कर्म कांड और ज्ञान कांड और उपासना कांड, तीन कांड वेदों में आता है। ये प्रसिद्ध गांव में बिल्कुल अपढ़ बहनों माताएं बूढ़ी बड़ी सब बातें जानती है। कर्मों का अनुसार होता है और संसार सपना है और भगवान की मर्जी है, भगवान कर्ष भी होता है। तो ये सब बातें वेदों की। तो हमारे यहाँ वेदों का, पुराणों का और योग दर्शन आदि दर्शनों का खूब प्रचार था। अब योग की बात है, उन योग की बात आज लोग आसन में लगा लेते, आसन है योग, आसन है ये योग है, वो जानने वाला योग जानने वाला है। तो वो योग वास्तव में ये आठ अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अष्टांग योग है। इसमें आसनों पर प्राणायाम पर इन पर लगा कर लोग योग मानते हैं। पातंजल महाराज यही मानता है योगस्तुत्व वृत्ति निरोध, परंतु गीता का योग विलक्षण है। गीता में योग की परिभाषा दो जगह की है, एक तो समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है, वो संगम त्यक्त्वा और सिद्धि सिद्धि और समभूत्वा और समत्वम योग उच्चते, आसक्ति का त्याग करो, सिद्धि असिद्धि कार्य की सिद्धि हो असिद्ध हो इसमें सम रहो, राग द्वेष मत करो, हर्षोग मत करो, न फूलो न भूलो, ऐसी स्थिति रखो, ये योग गीता का। पातंजल का है कि मन की चित्त की वृद्धि होती है क्षिप्त मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, पांच भूमिका बताई चित्त की, उसमें एकाग्रता में निरुद्ध में दो अवस्था में योग शुद्ध होता है, विक्षिप्त बुद्धि वाला योग का अधिकारी होता है। गीता में एक तो समता को योग कहा, वो कहता दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग उसका नाम योग है, मन दुखों का संयोग हो जाए, माऊ पैते पुनर्धर्म दुखारे मशाश्वतम नाथ मंदिर महात्मा न संसिद्धि परमांगता, ये पुनर्जन्म दुखालय है, दुखालय दुखी दुख है, इस जन्म मन से मिट जाए और समता आ जाए, इसका नाम योग है, ऐसे गीता ने योग कहा है। गीता में योग के अर्थ बहुत किए हैं, खास करके तीन तरह के अर्थ खास अर्थ है। एक चित्तवृत्ति का निरोध है, इसका भी ध्यान योग का विवेचन है, और समत्वम योग ये आखिरी आखिरी योग जो ध्यान योग ज्ञान योग भक्ति योग लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग अनाशक्ति योग कई तरह के योग है, अंत में योग नाम है परमात्मा के साथ संबंध हो जाए, संसार से संबंध विच्छेद हो जाए, संसार से संबंध विच्छेद को नाम विद्या दुख संयोग वियोग और परमात्मा के साथ स्थिति हो जाएगा समत्वम योग, समता परमात्मा का स्वरूप है। यहीतस्तर्गो ये सांग साम्य स्थित माना, जिनका साम्य अवस्था मन स्थित हो गया है उन लोगों ने यह जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, क्यों संसार विषम है और विषमता से ऊंचे उठ गए समता में स्थित हो गए, तो समत्वम योग उच्चते निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, जिसका मन निर्दोष और सम हो गया उन्होंने अपने मन को जीत लिया। उसमें वेदांत की बात ज्ञान योग की सांख्यिकी इनकी बातें इतनी नहीं आती है। वास्तव में मुक्ति क्या है, समत्वम, राग द्वेष न हो, हर्षोग न हो, हृदय में हलचल न हो, कोई विक्षेप न हो, शांति, इसका नाम योग है, ये गीता का योग है। तो संसार से संयोग का वियोग हो जाए और परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाए, इन दोनों का नाम योग है। दोनों का फल एक ही होगा, पर परमात्मा में स्थिति हो जाएगी और परमात्मा में स्थिति होने पर संसार का वियोग हो जाएगा, इसका नाम योग की परिभाषा बताइए। तीसरी बात, योग कर्म सुकौशल में ऐसा आया है, ये योग की महिमा है। कई कई टीकाकार इसमें भी योग की परिभाषा मान देते हैं, परंतु शंकराचार्य आदि बड़े बड़े आचार्य वो योग की परिभाषा नहीं मानते। कर्म सु योग कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, कर्म में कोई तत्व नहीं है, कर्म में जो समता है उसके नाम वो ही कौशल है। कोई कोई कहते हैं कर्म सु कौशलम योग, कर्म में कुशलता है उस नाम योग है, ऐसा कई टीकाकारों ने लिखा है। पर कर्म में कुशलता तो जेब कतरने वालों की बड़ी कुशलता होती है, पता ही नहीं लगने से तो योग हो जाएगा, फिर तो कुशलता का नाम योग नहीं है। योग कर्म सु कौशलम, कर्म सु योग कौशलम, कर्म में समता है यही कुशलता है, और नहीं तो कर्म ना बचते संतु कर्म से बनता है, पर इनमें समता है, ये योग है, ये कुशल है, ये असली चीज है कर्म योग का होना। ऐसे योग की परिभाषा बताई है। तुम योग का भी योग की प्राप्ति कैसे हो, तो अपने भी वे चेष्टा करते हैं भगवत गीता के अनुसार कि अपने राग द्वेष हर्क शोक यत मत होने दो। संसार नाम किसका है, अनुकूलता प्रतिकूलता, बस ये संसार है। ये ठीक रे बेटी कि अनुकूल हुआ ये प्रतिकूल हुआ, ये बढ़िया है ये घटिया है, ये अच्छा है ये मंदा है, ये ऊंचे देगी ये नीचे देगी चीज है, ये सुंदर है ये असुंदर है, इसका नाम संसार है। संसार मात्र इतना ही है। इस बार इस संसार से ऊंचा उठना क्या हुआ कि अपने मन में विकार न हो। परिस्थिति आवेगी, सुखदायी परिस्थिति आवेगी, दुखदायी परिस्थिति भी आवेगी, मुनाफे की परिस्थिति भी आवेगी, घाटे की परिस्थिति भी आवेगी, जन्म की परिस्थिति आवेगी, मरने की परिस्थिति भी आवेगी, बीमारी की और स्वस्थता की परिस्थिति आवेगी, दोनों तरह की परिस्थिति आए। इस परिस्थिति से ऊंचा हो गया तो ऊंचा क्या उठा कि ये मैं हर शोक न हो, नफा आ गया नुकसान, ये तो होता है। अलिंग्यम दिन रात्रि शास्त्र में लिखा है, ये तो अलिंग है, इसको उल्लंघन नहीं कर सकते, विचार नहीं सकते। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात्रि आती है, ऐसे अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता, प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता, ये तो अलिंग आएगा। अब आएगा उसमें क्या सोना है, क्या चिंता करनी है। घर में कोई मर जाता है तो कहते हैं भी मर गया, हमारे जो घर का चांद रहा, हमारे अंदर प्रकाश है, अंधेरा हो गया, हमारे घर में तो अंधेरा हो गया। उनमें रोते हैं मुर्जो से, सूर्य सोता है तो दुनिया में अंधेरा हो जाता है, भूगोल के इस भाग में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो भी रोते नहीं आदमी, और प्रकाश होता है सूर्य होने से तो भी इसमें खुशी नहीं मनाते, क्यों नहीं बनाते, ये तो होता है, ये क्या बात है। रोजाना सूर्य उदय अस्त होता है, फिर फिर अस्त होता है, ऐसे मृत्यु होती है, जन्म होता है, घटा होता है, नफा होता है, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, वर्षा आती है, हवा चलती है, ये बदलता रहता है, संसार बदलना स्वरूप है इसका, संसार भी ये चलता रहता है एकदम ही। इसमें क्या राजी होना है, क्या नाराज होना है, ऐसे होते हुए इसमें परमात्मा की प्राप्ति कर लेना है। मनुष्य जन्म लिया है तो ऐसा काम कर दिया जो बार बार जन्म मरण न हो, बार बार दुख पापना न हो, दुखों का अत्यंत अभाव हो जाए, परम आनंद की शांति की प्राप्ति हो जाए, ऐसा काम करो। तो ये संत महात्माओं ने बताया, अच्छे अच्छे पंडितों ने, ऋषि महर्षियों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने ये सब बताई बात कि अपने ऊंचा उठो, इसमें रात दिन लगे रहो ये बात नहीं, और ये लगे रहना चाहिए आरंभ से ही, बाल्यावस्था से ही, यही बात है। हमारी शिक्षा सदा से ऐसी होती आई है कि बचपन से ही इधर लगाओ। पढ़ते हैं ब्रह्मचारी होते हैं तो ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक उपकुलवान ब्रह्मचारी होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्याश्रम से ही भजन ध्यान में लग जाए, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जो करे लग जाए, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। उपगुरुवान वे होते हैं जो ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम में जाते हैं, गृहस्थाश्रम में वानप्रस्थ संन्यास, तो अंत में त्याग तो सबके लिए है। रोजाना गृहस्थ रहना, हर उम्र में गृहस्थी रहना, ये बात नहीं है। इनसे उपराम होना, परमात्मा तत्व तो प्राप्त करना, ये खास बात है। अब उपगुरुवान होते हैं वो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके, पढ़ाई करके, फिर उपगुरुवान क्यों हुए कि विचार के द्वारा विषयों का त्याग न कर सके, इतना विवेक नहीं है, इतनी विचार शक्ति तेज नहीं है कि जिससे अपने समाधान का भोगने से क्या होगा। संसार का सुख लो, वो दुख जरूरी है, ध्यान दे के सुने इस बात को। संसार का जो सुख है वो बिना दुख होता नहीं, और सुख भोगने के दुख से वंचित रहता नहीं। ये दो बात खूब याद करने की। संसार का सुख लेने वाले के लिए पहले दुख का होना आवश्यक है, अगर दुख नहीं होगा तो सुख भोग सकेगा नहीं, और सुख भोगेगा उसको अवश्य ही दुख का भोगना पड़ेगा ही, ये कभी बच सकता नहीं। तो आदि और अंत में दुख है, तो सुख के समय भी दुख ही है। सिद्धांत है आदावंदेश नास्ती वर्तमान भी तथा, जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता, और आदि अंत में होता है वही वर्तमान में होता है। तो वर्तमान में दिखता है जैसे सपना, पहले जागते है तो नहीं है, फिर जागने के बाद नहीं है, तो सपने के समय भी नहीं है। ऐसे आदि और अंत में दुख है, तो दुख आ रहे मसास को दुख आ रहे ही माना है, जैसे भोजनालय वस्त्रालय विद्यालय आदि होते हैं, ऐसे संसार को भगवान ने दुखालय बताया, दुख ही दुख है, सुख नहीं है। अब इस सुख में संग्रह करते हैं और वो अनुकूल भोग भोगते हैं, ये दो में लोगों की फसावट महान हो रही है, और ये ठहरेगी नहीं, पहले थी नहीं फिर रहेगी नहीं, और बीच में होते हुए भी धनवान हो जाए तो सबसे अधिक धनवान तो हो नहीं सकते, बड़ों के धनवान होते तो ईर्ष्या होती है, बड़े होते हैं तो ऐसे सुनता दुख जन्म होती है, और छोटों को देखते हैं अपने तो अभिमान आता है, तो आपस है, आपस के बिना है नहीं। भूख जोरदार लगे तब भोजन अच्छा लगता है, और भोजन करने के बाद भूख लगती है, तो पहले भूख चाहिए फिर भूख होगी, ऐसे हर एक विषय में ऐसी बात है। प्यास जोर की लगे तब पानी सुख देता है, और पीने के बाद फिर बहुत लोग से प्यास लगती है, ऐसे जितने सुख है सबके सब पहले दुख होना चाहिए। पैसा नहीं है हमारे पास, इसकी दरिद्रता का दुख होगा तब पैसा सुख देगा, और जो दरिद्र दुख नहीं है उसको पैसा मिल जाए तो क्या, नहीं मिल जाए तो पैसे में दुख देने सुख देने की ताकत नहीं है। भीतर अभाव का अनुभव होने से दुख होता है, अब अभाव का अनुभव होता है तब सुख जी होती है। तो कोई समझदार आदमी ऐसा नहीं करता कि छुरा लगाओ भाई थोड़ा चीरा लगावे, क्योंकि बढ़िया मलम है तीन दिन में ठीक कर देता है, तो चीरा लगाओ तीन दिन में ठीक हो जाए, तो पहले ठीक ये चीरा ही क्यों लगाओ भाई, चीरा लगाने क्या मतलब है, पहले दुख पाओ पहले सुख भोगो फिर दुख पाओ, कि बढ़िया मलम बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया तो अच्छी बात है, चीरा लगाओ क्यों लग जाए तो लगाओ ये ठीक है, ऐसे पहले दुख भोगो फिर सुख रहेंगे। लेख पढ़ा था गांधी जी का लिखा हुआ था, ऐसी बात है, उसमें कहा कि ऐसे आदमी हमने देखे हैं जो खाते खाते पेट भर जाए तो क्या करें, खा नहीं सकते तो उल्टी करते, उल्टी कर निकाल देते हैं फिर खाते, फिर वो खाएंगे फिर उल्टी करते, नहीं तो खा नहीं सकते पेट भर जाए क्या करें, बड़ी आफत हो जाए, मन पेट भरे ही नहीं खाते ही चले जाए। एक ऐसी बात है पारमार्थिक मार्ग में ऐसा एक प्रेम होता है, प्रेम की बात बताई है, एक ज्ञान होता है एक प्रेम होता है, तो प्रेम में ऐसी बात है प्रतिक्षण वर्धमान, उसमें आनंद प्रतिक्षण बढ़ता है, प्रेम का तो अंत आता नहीं और उसमें पेट भरता नहीं और प्रेम का अंत आता नहीं, बढ़िया चीज हो तो पेट भर जाए तो क्या खावे और चीज खत्म हो जाए तो क्या खाए बताओ, दोनों यहाँ फंसे, पेट भर जाए तो खा नहीं सकती और चीज खत्म हो तो खा नहीं सकती क्या खावे, पर परमात्मा की प्राप्ति में जो प्रेम की प्राप्ति है उसमें ऐसा है कि भूख बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता ही जाती है, प्रतिक्षण आनंद ही आनंद बढ़ता ही रहता है। बताया है कि वो चंद्रमा की तरह है, पर चंद्रमा तो पूर्णिमा आ जाती है तो प्रेम समाप्त हो जाता है बढ़ना, इसमें पूर्णिमा आती ही नहीं, इसमें बढ़ता ही रहता है, अनंत जुगों तक आनंद बढ़ता है। आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी दिने दिने नवम नवम नवाभिनंद संभवम, देखते हैं दिने दिने नवम नवम, दिन दिन प्रति नया नया भगवान का रूप, कृष्ण का भगवान का रूप है, समझे। यशो मसी किशोरकम नमामि दुग्ध चोरकम, शंकराचार्य महाराज ने ये नया नया आनंद होता है, नित्य नया दिने दिने नवम, प्रेम का आनंद है, ज्ञान का आनंद एक है, शांत गभी गंभीर अपार अनंत शांति, ये ज्ञान का आनंद है, और प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, जैसे दूध में पानी में उबाल आता है, उबाल आता ही रहता है, ऐसे ही आनंद का उबाल आता ही रहता है, आनंद की लहरें आती रहती है, बढ़ती रहती है, मालूम होता मन कल तो ऐसा नहीं था आज तो और से आया, ऐसे विशेष आनंद आता है कि क्या पता कि जो सत्संग करते हैं भाई बहन वो सत्संग मिलता है तो मुझे आज विशेष बातें आई, दूसरे के भी आज तो बहुत विशेष बात आई, क्यों आज तो बहुत ही अच्छी बातें आई, वो अच्छी 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 लगती रहती है। सत्संग का मर्म जानने वाले की कभी तृप्ति नहीं होती, राम सरित में आया है कि राम चरित देव सुन से अघा ही रस विशेष जाना तिरना ही, राम सरित सुनते सुनते धाप जाते तृप्त हो जाते हैं तो उनको राम सरित का रस आया नहीं, राम सरित रस आ जाता है तो सुनते अघाते नहीं, उनके तो बस जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरी नाना, भरे ही निरंतर हुए न पूरे जिनके हृदय सदन चौरे, तो वो तो नया नया ही आनंद आता है, नया सब सुनते तो नया नया, रामायण पाठ करते तो नया नया, रामायण का अर्थ सुनते गहरे उतरते हैं तो नया नया, गीता पढ़ते हैं तो अर्थ नया नया, बड़े विलक्षण विलक्षण अर्थ हम मालूम होते हैं। तो ये क्या है, ये एक आनंद नया ही नया बिल्कुल नया, संसार का आनंद तो सुख आरंभ में तो सुख दिखता है, पीछे सुख मर जाता है, फिर दुख हो जाता है, भूख लगी भोजन का ग्रास बढ़िया लगता है, दूसरे ग्रास तीसरे ग्रास में उतना आनंद नहीं, और अंत में तृप्त हो जाने पर ग्रास अच्छा लगता नहीं, जबरदस्ती कोई कहता है तो गुस्सा आ जाता है, और जबरदस्ती पी ले तो उल्टी हो जाती है, वो जो आनंद देने वाला है ये सुख ठहरने वाला नहीं है। विषयेन्द्र संयोगात यह तदग्रे अमृतोपम, विषयेन्द्र संबंध से अमृत के दिखता है, परिणाम है विष में वो तत्सुख, ये राजसी सुख है संसार का। तो ये सुख दिखता है, आकर्षण बहुत होता है, अरे इसी में फंसे हुए हैं। हमें तो बड़ा दुख होता है, आश्चर्य आता है और दुख भी होता है, करें क्या, भाई बहन हमारे मानते ही नहीं, केवल भोगों के लिए गर्भपात करते हैं, भोगों के लिए नसबंदी करते हैं, भोगों के लिए ऑपरेशन करते हैं, सिवाय भोग और कोई उद्देश्य हमने सोचा मिला ही नहीं हमें तो, केवल इसके लिए, और यही तरह कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल भोग है नहीं, परमात्मा प्राप्ति करनी चाहिए, परंतु आज तो उद्देश्य राजगार प्रजा का सबके यही हो गया, पर भोग भोगना। पशुओं से बहुत नीचे चले गए, कुत्ता है गधा है ऐसे ही नीचे चले गए, सुअर है इनकी, अब क्या बताओ उनकी क्या उम्मत है, पशु पक्षी है इनमें भी समय आता है, पर इनकी समय आई नहीं, कुत्तों की काती आती है, गधों की श्रावण आता है, इनके क्या आता है पता नहीं, राम 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 ऐसी दुर्दशा होती है, फिर मनुष्य कह रहे हैं कि हम मनुष्य, अरे मनुष्य तो भाई इन भोगों से ऊंचे उठो तब है, आज ध्येय ही विषय बन गया, लक्ष्य ही ये बन गया, नरकों में ले जाने का रास्ता ही खुल गया, और इसमें ही बढ़िया मानने लग गए, पैसा पैदा हो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात चोरी डकैती, किसने से पैसा मिल जाए और किसने से भोग भोग ले, कामोपभोग परमा एतावती निश्चित, संग्रह करना सुख भोगना बस यही पूरा सिद्धांत बन गया, पशुओं से नीचे बन गए, महान अनर्थ हो गया भाइयों का अनुच्छेद करो, भगवान की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, ये यहाँ तो दुख भोगो और अंत में नरकों में जाओ इसके लिए नहीं मिला है, परंतु तो कहना ही मानते नहीं। एक लड़का पढ़ने को गया काशी जी, तो घर वालों ने पत्र लिखा गुरु जी को कि हमारा लड़का कैसा पढ़ा है, तो एक दोस्त पत्र आए तो लिखा कि तुम्हारा लड़का पंडित हो गया, बड़ा अच्छा पढ़ गया है, सिर्फ दो बात की कमी है और तो पूरा पढ़ गया है। पूछा कि दो बात की क्या कमी है, कि आप में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं और पूरा पंडित है, उसी देश है, ये दशा हमारे देश की हो रही है, खुद तो सोचते नहीं मानते नहीं, अब क्या करें, ऐसी सा कोई उपाय नहीं, अज्ञता अश्रद्धा संशय आत्मा विनेशी, गीता में लगा अज्ञा है अश्रद्धा में है, स्वयं जानते नहीं दूसरे की बात मानते नहीं, संशय आत्मा विनेश नहीं, ना इन लोगों से न परो न ये लोग है न पर लोग है न सुख है न शांति है। ये चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है, तो एक संत कहते थे ये 44 धारा है भाई, चौथा का 40 44 धारा, इसमें आगे बस अब मौज करो, खुद में तो अकल नहीं भी है, सकते नहीं या दूसरे की मानते नहीं, अब क्या करें बताओ, इनको माने तो दूसरा कह जो मान ले तो ठीक हो जाए, अथवा स्वयं सोचे समझे तो ठीक हो जाए, तो स्वयं तो सोचने नहीं दीजिए मानते नहीं, ऐसी आपत आ गई, अब हम क्या करें कैसे करें बताओ, तो मानना शुरू कर दो। मैं देखता हूँ आजकल लड़कों में और पुराने लड़कों में फर्क दिखता है हमें काफी, हमारे सहपाठी से चिवंदराम जी पीछे जितने विद्यार्थी आते गए और पढ़ते गए वे परीक्षा बहुत विलक्षण करते थे, अशुद्धि पहचानने में हमारे जितने विद्यार्थी सबसे उत्तेज थे, रामानंद दिग्विजय लिखा भगवत दास ब्रह्मचारी ने संस्कृत में 1819 सर्ग होगा अध्याय, इसने आजकल के विद्यार्थी ने लिखा है आजकल पढ़े थे, हाँ इसमें अशुद्धि निकालूंगा, जोधपुर की बात है, देखा देख पढ़ के ये समझ, ऊपर लिख दिया गया अमुक श्लोक में ये अशुद्धि है। छंदोभंग जैसे सारग्राम जी हमारे बहुत अच्छे कवि थे, उनमें कहते छंदोभंग होता है। अच्छे अच्छे पुस्तकों अच्छे पंडित होंगे, कहते कालिदास आदि में अशुद्धि नहीं दिखती, ऐसे पंडित हुए अशुद्धि नहीं दिखती। तो ऐसे वो बोलते थे, विलक्षण परीक्षा थी उनकी। इतना उन्होंने कहा था, लारे जितने विद्यार्थी पढ़ने आए कि इसमें किसी भी दार्शनिक बुद्धि नहीं है कि दर्शनों में गहरा उतरे और गहरा विचार करे, ऐसी बुद्धि नहीं है इनमें। तो पिछाड़ी वाले जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उनमें बहुत कम आदमियों की बुद्धि है जो दार्शनिक तत्व को समझे। दर्शन शास्त्र दर्शन नाम अनुभव, ये केवल पुस्तक की विद्या नहीं है, उसका अनुभव करने का नाम दर्शन शास्त्र है, दर्शन पढ़ना नहीं है। जैसे पूरी मानसा उत्तर में मनसा सांख्य योग न्याय विशेषज्ञ छह दर्शन है, दर्शन है ना अनुभव करो, स्वयं अनुभव करने के दर्शन करने के साक्षात देखने के हैं। ये यूँ पढ़ने के नहीं, कंठस्थ करने के नहीं है, याद करने के नहीं है। याद करने से नहीं होता, याद करना और होता है। आज सुबह बताया था याद करना कंठस्थ करना दूसरी बात है, उसका अनुभव करना ये बात बताई थी सुबह। उसको एक स्वीकार करना, स्वीकार करने के बाद उसका एक एक उसकी निश्चित बात एक बन जाती है भीतर में, अनुभव हो जाता है। तो अनुभव होने पर वो नित्य रहती है। तो स्वीकृति एक चीज बहुत बढ़िया बात है। तो स्वीकार कर लिया तो वो स्वीकार कर जाती नहीं, तो स्वयं में भीतर में उसका एक अनुभव सावधानी होती है, एक सावधानी होती है। जैसे सुबह कहा था कि जैसे हम अब ये जागृति कहा था मैंने, एक जागृति रहनी चाहिए। हम कहते हैं भगवान को अपना मानो, कहते हमारा भगवान को मान लिया। मान लिया तब हो, जैसे ब्याह होने पर कन्या कभी नहीं मानती कि मैं कुंवारी हूँ, ये मानती नहीं, ये इनका नाम स्वीकृति। और वो हरदम रहे उसका नाम है जागृति। स्वीकृति की जागृति हरदम रहे वो मानना होता है। चेला हो जाता है, साधु हो जाता है, तो वो स्वीकृति हो जाती है, मैं गृहस्थ नहीं हूँ मैं साधु हूँ। विधवा हो जाती है तो उसकी स्वीकृति, मैं तो विधवा हूँ मैं स्वावलंबन नहीं हूँ। गोद चला जाता है वो उसका ही बेटा हो जाता है, सब कुछ उन माँ बाप जो मान लिया है जिनकी गोद चला उसके साथ ही होता है। ऐसे हमारी भगवान के साथ में एकता की स्वीकृति हो जाए तो विलक्षण है। तो भगवान के साथ स्वीकृति ऐसी नहीं है, इससे विलक्षण है, क्योंकि भगवान के साथ हमारी एकता पहले से है। ये इसकी स्मृति होती है, स्मृति। जैसे कोई बात भूल जाए और फिर बात याद आ जाती है, तो याद आने से कोई नई बात नहीं हुई है, मन भूली मिट गई। इस वजह से मैं भगवान का हूँ ये याद करने की नहीं है, ये एक स्मृति है। याद मैं तो भगवान का हूँ भाई, संसार में तो मैं नहीं हूँ, संसार में तो आया हूँ। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आपके घर की आपकी स्वीकृति है, उसकी एक जागृति है, अमुक मेरा घर है। यहाँ से जाने पर बात करते करते भी उसी गली में उसी घर में आज चले जाते बिना ख्याल किए आप से आप। तो ऐसे परमात्म तत्व की जागृति होती है, बिना याद किए बिना चिंतन किए बिना विचार किए उस स्थिति की स्थिति होती है। वो जागृति होनी चाहिए, स्वीकृति हो और जागृति हो जाए, उसके बाद अनुभव हो जाता है। फिर अनुभव होने पर मिटता ही नहीं, जागृति भी नहीं मिटती। स्वीकृति होने पर जागृति भी नहीं मिटती, और बात याद करते हैं पर तो भूल जाते हैं, तो याद करी हुई निरंतर नहीं रहती, वो भूली होती है। जागृति होने पर फिर भूली नहीं होती। याद करना नहीं पड़ता, दसना नहीं पड़ता, जब करना नहीं पड़ता, पर श्री गुरु जी अब याद स्वतः स्वाभाविक याद रहती है। जैसे भाई लोगों के भीतर स्वतः बिना याद के मैं पुरुष हूँ ऐसी याद रहती है, हमारी बहनों को याद रहती है मैं स्त्री हूँ, इनमें याद तो नहीं करना पड़ता, मरा जपना पड़ता मैं स्त्री हूँ स्त्री हूँ स्त्री हूँ, जब करना ही नहीं पड़ता। एक श्री कृष्ण जी ठीक है स्त्री हूँ मैं साधु हूँ, अब साधु जागृति हो गई, अब साधु पढ़ेंगे एक मारा फिर जितने बैठे किसी को पूछ लो फिर मैं साधु हूँ साधु हूँ साधु हूँ साधु हूँ साधु जब किया हो तो एक मारा नहीं फेरी मेरे भीतर की बात बदल गई। ये स्वीकृति ऐसे मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे ये स्वीकृति मिला भीतर से अर्जुन जागृति है मैं तो भगवान का ही हूँ। मैंने वो कहानी सुनाई थी चोर की, उसके कहने में उम्र भर में चोर नहीं की चोरी की नहीं उम्र भर में नहीं की फिर करूंगा नहीं और पकड़ जाए दंड जाए वही ये सच्चे आदमी ये इनको दंड मत दो सच्चे चकरा गया राजा उम्र भर में चोरी की नहीं और ये सत्य है। तो ये पहले उम्र की बात है जिस दिन से मैंने कहा ये नाराज मैं तो आपका हूँ उस दिन मेरा दुर्धर्म हो गया। ये साधु क्या तो देते हैं दुर्धर्म हो गया पर दुर्धर्म मानते नहीं, दुर्धर्म माने तो पहले मेरे कुछ था ही नहीं ना घर वाले थे ना कोई था मेरे में धर्म ही दूसरा हो गया मैं तो दुर्धर्म हूँ। लोग के चपाए हुए गोला बाहर नहीं सके पक्के मुझे मैं तो हूँ भगवान का हूँ मैं भगवान भेद है ये तो मीरा भाई ने जहर नहीं किया प्रहलाद जी को जहर असर नहीं किया आग नहीं जलाई बात क्या थी वो भगवान है सब इसमें भगवान है अग्नि में भगवान है। अब अग्नि में भगवान की भावना वो कैसे करे मीरा भाई के सामने सिंह छोड़ा पिंजरे में रखा भूखा हो गया सिंह तो मीरा भाई के महल के सामने छोड़ दिया वो गया और सामने तो आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए प्रहलाद जी भगवान भगवान आ गए खुशी मनाई और आरती करती है सामने और जल की आरती करी सुनती है छाटा लगा वो सुनते अब कैसे मारे भगवान को खा जाएगा भगवान के सिंह को तो खाया जाए प्रहलाद जी भगवान आ गए आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए खुशी होगी प्रसन्न होगी तो उनमें ताकत नहीं खाया जाए कैसे खाया जाए। तो ये बात इसको नाम स्वीकृति है वो बात से हरदम सतह से सोचना नहीं पड़ता समझना नहीं पड़ता याद करना नहीं पड़ता कोई मानना नहीं पड़ता वो तो हो गया हो गया हो गया है ही वही हो नहीं गया है याद आ गई। अर्जुन ने यही कहा मेरे ज्ञान हो गया नहीं कहा भगवान ने पूछा कि भाई तेने एकाग्रता से गीता सुनी कि नहीं और वो अज्ञान तेरा मिटा के नहीं सम्मोह कसी देता एकाग्रता से गीता सुनी और कसी अज्ञान सम्मोह नष्ट धनंजय ज्ञान सो नष्ट हो गया तो अर्जुन नष्ट हो मोह और स्मृति लब्धा ओहो याद आ गई स्मृति आ गई महाराज अब स्मृति आ गई उसको कैसे दूर करे मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं ये बात याद आ गई था तो पहले भी भगवान का मन भूली हुई बात थी जानता था मैं संसार का हूँ नष्ट हूँ स्मृति लब्धा तो भगवान की भक्ति में तो भगवान का हूँ ये याद आ जाए और कर्मयोग में मेरे में कामना है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं कामना हो सकती नहीं मैं चेतन उसमें जड़ की कामना इच्छा कैसे हो सकती है सुनते लगा याद आ गई सर हमें तो कामना है ही नहीं बोध के बीच में मैं तो शुद्ध सत्यनारायण स्वरूप हूँ ये भूल मिट गई संसारी मानता था अज्ञान वाला अज्ञान मिट गया याद आ गई शुभम शुद्धो हम जगत सर्वम से मम शिव नष्ट हो स्मृति लब्धा यानी कि ज्ञान हो गया, अज्ञान मिट गया, मोह मिट गया, मोर गया, मोह चाहिए जो उस बात को नहीं जानते थे वो मिट गया, वो है जो हो गया। अब कैसे मुक्ति के बाद फिर जन्म होता है, नहीं तो संसार मिट जाएगा, संसार की चिंता आप मत करो। मोह मिटने पर जन्म कैसे हो जाएगा, कैसे महाप्रलय में सब हो जाए, महासर्ग में पैदा हो जाएंगे भाई। मोह मिट गया, याद आ गई, अब नया कोई उत्पन्न जो हुआ है, वे जानते मुक्ति एक होती है, पैदा होती है मुक्ति, पैदा नहीं होती मुक्ति, स्वतः स्वरूप है वो। वहम मिट गया, अज्ञान मिट गया, स्मृति आ गई, भूल थी मिट गई, है क्यों हो गया, अब क्या क्या जन्म हो। तो ये हमारी शास्त्रों की बातें बहुत विलक्षण है, बड़ी ही अलौकिक है। ये नहीं भाई हमारे संप्रदाय बढ़ा लो, मुसलमान बना लो, ईसाई बना लो, बना लो, अरे बना क्या जाए, है ऐसी है चीज ऐसी है। ये भारतीय संस्कृति कितने विलक्षण है, मैंने इनको ले कुल्हाड़ा जन पुलों ने पीछे पड़ जाए जो काटने के लिए, भाई बहन लगे हैं जोर से अपने हाथों ही, अपना पैर काटते हैं, अपने हाथों से ही काटते, कृपा करो कृपा नाश, ऐसी संस्कृति का नाश करते हो, कौन सुनेगा आपके शास्त्रों की बात, कौन साधु होगा, कौन विचार कर भजन ध्यान करेगा, कौन लगेगा, आते हुए कोई जीव बिचारे आ जाए जो कल्याण कर ले, हम दो और हमारे दो, अरे कहीं एक एक होना चाहिए संसार, अगर दो के दो जन्म में अगर मरे मरे खत्म हो जाएंगे तो आप सब खत्म हो जाएगा, इसमें खत्म करना नहीं पड़ेगा, आप से आप मरते मरेंगे तो दो में से मरेंगे, दो किसी अतीत तो होगा नहीं, दो हम दो हमारे दो मरेंगे, मरने में से खत्म हो जाएंगे, फिर रहेगा ही नहीं। ऐसी एक चीज निकाली है महाराज, और निकाली देखो तो निकाली, उन्होंने मन में जाने क्या उनके अध्यय, हमने तो सुना है कि हिंदुओं का नाश करने के लिए निकाली है, हमें पता नहीं है, जानते नहीं पूरा कोई, हमारे को पता नहीं, परंतु नतीजा यही है, इसका नतीजा है कि ये संस्कृति नष्ट हो जाए। तो कल्याण मार्ग इतना सुगम, इतना सरल, इतना बढ़िया, जिस संस्कृति में बताया उस संस्कृति का भाई बनो, नाश मत करो, कृपा करो कृपा नाश, अंधाता हाथ जोड़ता हूँ कृपा करो, आप सत्यानाश मत करो। जीव कोई कल्याण के लिए बेचारा आवे तो कैसे कल्याण करेगा, अगर एक दो छोरा होता वे तो बेईमानी प्राय होता, सब तो नहीं कह सकते, परंतु भोगिच्छा से संबंध होता है, उससे लड़का लड़की जन्म से वो लड़के ईमानदार बलिहार संत रूप कैसे होंगे, कठिन है, असंभव बात कोई है ही नहीं भगवान के दरबार में। परंतु सृष्टि कैसी हो जाएगी, सभी ऐसे भोगेच्छा वाली पैदा होगी, क्योंकि भोगेच्छा से पैदा होते हैं, भोगेच्छा ही पैदा होगी, और ये भोग है वो तो पसंद करने वाला है, कारण गुण संगो से सदस्योनियों में कारण गुणों का संग है, उन गुणों के साथ हिस करके नष्ट हो रहे हो। अगर इस जीवों की किसी की मुक्ति हो जाए, वो भी आ न जाए हिंदू धर्म में, कहीं आ जाए मुक्ति कर लेगा, पहले से ही रोक लगा तो वो जलने ही नहीं, आवे ही नहीं, और विरोधियों के वृक्ष बढ़ जाए वे बढ़ता रहेगा, यहाँ जन्म रहेंगे वहां जन्म रहेंगे, वो संख्या बढ़ेगी, क्या करें कैसे करें, हमारे तो अकड़ बात आती है, कहा बताती कि बैल बैल छूटे बामन क्या छूटे और क्या करे, बैल बिचार बह जाओ और क्या करे, ऐसे बामन क्या कह दे, कोई माने जो मेरी बात तो उसमें बात होगी, अपने में तो अकड़ नहीं, दूसरे की मानता नहीं, और चीजें उपाय क्या करे। सज्जनों आप कृपा करो, मेहरबानी करो, जो अपने ठीक तरह से तत्व को समझो, अपने कल्याण की बात समझो, ये मौका मिला है, बड़ा दुर्लभ मिलता है, मनुष्य शरीर में फिर कल्याण की इच्छा, अपने कल्याण की इच्छा और फिर कोई उपाय मिल जाए, तो हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत विलक्षण उपाय बताया है, बड़े सुंदर सरल सरल बताया। बहनों माता एक ही धर्म एक व्रत ने माँ काय वचन मन पति पद प्रिय माँ पति व्रत धारण को कितना कल्याण हो गया महाराज, कितना उनमें प्रभाव, कितनी योग्यता, कितनी शक्ति आ जाती है। सूर्य को कह दिया उदय नहीं हो तो सूर्य बंद हो जाए, कितनी है। एक पतिव्रता थी, कथा आती है उसकी, तो एक लड़का खेल रहा था, वो बैठी थी उसके गोदी में सिर रखे हुए, उसके पति सोए हुए थे, तो गर्द खेलता खेलता वो चूल्हे में चला गया, चूल्हे में आग थी, आग में चला गया, तो आग में चला गया तो वो बैठी रही, अगर उठे तो पति नींद खुल जाए, उनको सू पहुंच जाए। सुतम पतंतम प्रसमीक्ष भा पावके नबोधयामास पतिम पतिव्रता। सुतम पतंतम प्रसमीक्ष भाव, अग्नि में गिरता हुआ देखा लड़के को, नबोधयामास पतिम पतिव्रता, पतिव्रता पति ने बोधयामास उनको जगाया नहीं। तो पतिव्रता साप भय न पीड़ितो हुतासन स्तंदन पंक शीतल। पतिव्रता साप जैसे डरता हुआ अग्नि चंदन पंक शीतल, चंदन के गाली से ठंड हो गया, बच्चा खेलता खीर जलता नहीं। कितनी ताकत आ जाए अपने धर्म के पालन करने में, कितनी शक्ति आ जाए, वो शक्ति सामने पड़ी है सबकी मिलने के लिए। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम को, कैसे क्यों हो, कितनी विलक्षण बात है। सांस में आंस नहीं है पर विचार ही नहीं करते इस बात ने भाई। नारायण 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 नारायण, तो ये होश में वो क्या करें, कैसे करें, आश्चर्य की बात है। सुनने वाले आप भी ख्याल नहीं करो तो दूसरा क्या खाए, वो तो बेचारे सुनने को भी नहीं मिला। उपनिषद में आता है श्रवणायाप बहु फिर यो न लभ्य। बहुत से आदमियों को तो ये बातें सुनने को ही नहीं मिलती, तो कैसे जीव का कल्याण हो, क्या होता है, क्या कल्याण है क्या नहीं। पशुओं की तरह ही अपना जीवन बीत रहा है, चीजों में कितनी अशुद्धि, पान राग है, कितनी अशुद्धि उसमें, कितना उसमें दुर्व्यसन है, कितना वो नशा है, कितनी खराबी है, कितने पैसे खर्च होते हैं, कितना स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर भी लोग वो इस करते हैं। खाने पीने में ख्याल रखो भाई, बहुत अशुद्धि का प्रचार हो रहा है, नीची नीची खाते हैं, महान पाप जो महापातक लिखा है वो मदिरा का प्रचार हो रहा है, मदिरा का सेवन कर रहे हैं। राम 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 राम, ऊंचे ऊंचे आसों में मछली है, मांस है, अंडा है, ये महाराज अच्छे अच्छे आसों में, ब्राह्मणों में और वेश्यों में। भाई यहाँ को खाना पीना ये महाराज बमन बनिया है, बमन बनिया है, बमन बनिया, बमन बनिया, या उदाहरण दे रहे थे। अब बमन बनिया में आई आगे किसका उदाहरण देगी बताओ, ब्राह्मणों में बनिया में। सिनेमा जाते हैं, सिनेमा में देखते हैं, सिनेमा के बाद में क्या है कि आमलेट है, आमलेट, मैं कहूँ आमलेट हुआ, सबके सब लेट हुआ, कोई बाकी ठिकाना नहीं रहा। तवे पर तेल डाल करके अंडा फोड़ उसका रस डाल से उसका बड़ा चीर रहा, उसको कहते आमलेट, सब आमलेट खाओ, आमलेट कोई बाकी नहीं रहा, जो अपने टाइम पर ठीक रहे, सबके सब लेट हो जाए, ऐसी चीज है। उससे सेवन करते हैं, बड़े खुशी मनाते हैं, सभ्यता के नाते हवाई जहाज में चढ़े हैं, अब बढ़िया वहां भोजन नहीं करें तो बुरा लगे समाज में, नहीं खाने की इच्छा होने वाले भी खाते हैं, क्या करने को, क्या करें यार, अच्छा बनने के लिए भीतर से रुचि नहीं है तो बुरा बनेगा, जान करके मान बढ़ाई के लिए। क्या है अपमान हो जाए तो क्या हो गया, पर मान बढ़ाई चाहिए। नहीं किसी सेवन करने लगते होते मांस अंडा आदि खाते, नहीं तो लोग निंदा करे क्योंकि बात सुनी है। सोए सोए सावधान घोटला में खाने लगे तो कोई नहीं कहा यार यार क्या बात है, अच्छा तुम खाना मत चाहो साथ साथ बैठो, मित्र के साथ बैठ जाओ। भैया क्या करते बैठे बैठे, कुछ अपने बिदाम काजू और ये ले किसमिस ले आओ, तुम वो खाओ हम वो खाओ, तुम वो खाया करो वो खाते खाते। अरे यार देख तुझे थोड़ी सी चीज है, इसमें कोई अशुद्ध चीज नहीं है, वो खाए वो खाते खाते फिर हम तो भाई शाकाहारी है, भेजते भी खाते हम ना खाते मान क्या होते है। फिर उसमें वही चमचा उसमें वही चमचा उसी में तो खा तो दिया। अच्छा यार देखो तुझे कैसा है, वही बन जाते हैं वही सभ्यता सभ्यता के नाते मानस बुझ गया, ऐसा जो उसे प्रसार हो रहा है, होश नहीं आ रहा है, कितना स्वास्थ्य बिगड़ता है। पशुओं के कितने रोग होते हैं वो रोग आ गए, आजकल ऐसे रोग आ गए हैं जिनका पहचान होनी मुश्किल है, शास्त्रों में देख नहीं आता। जैसे बाप और माँ और जाति के वर्ण संकर होता है, ऐसे रोगों के रोग संकर हो गए। आप लोग दूसरा दूसरे रोग हुआ मिले तो तीसरा रोग पैदा हो जाए, शास्त्रों में वर्ण रहता उसे भगवान से उसको वर्ण सुना वात है पित्त है कपट है द्वंद है समय पात है, ऐसे वर्ण आ रहा है। अब मिश्रण होने से न्यारे ये रोग है, ऐसे ऐसे रोग आ गए हैं, विदेशों में ये रोग पैदा हुआ है, अभी तक इलाज है नहीं, भारत में ही कहते हैं आ गया है। वो संबंध से एक एक संसर्ग से लिफाफे ऊपर आता था कि छुआछूत मिटाओ, अब बंद कर दिया। वो आया रोग विदेशों में तो भारत में आ गया, छुआछूत के कारण से आता है वो रोग। अब वो दिखना हमारे सामने आप लोग देखते ही हो, अंतर्देशीय पत्र में लिखा आता सोचा छुआछूत मत मानो, अब उस वो बंद कर दिया। अब डॉक्टरों ने विचार के लिए छुआछूत से रोग होते हैं। अरे हमारे ऋषि मुनि पहले से कह रहे हैं, पर तो वो तो मानेंगे नहीं, फिर आप जानते हैं नहीं, आप उस बड़े तब जाने। दो आदमी थे एक आस्तिक एक नास्तिक, दोनों गए कहते ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर है ही नहीं। अरे ईश्वर है भाई, ईश्वर है तो ईश्वर में अक्ल नहीं है, ईश्वर होगा तुम्हारे में अक्ल तो नहीं है। कैसे देखो ये इतने मोटे नीम कितना बड़ा फल, बड़ा बड़ा नीम बोली बोलते छोटी सी, अरे बेल दे कुछ मंडी बेल नीचे पड़ी है बड़ा बड़ा बड़ा, कम से कम यथायोग फल लगाना चाहिए ना, बड़ा हो उसकी बड़ा फल लगे छोटे से छोटा फल लगे, पर कोई अकल नहीं है ईश्वर है तो अकल नहीं बेअकल है। ऐसे वो कहता गया कई बार, वो क्या भाई मैं तो ऐसा नहीं मानता, तू मानता नहीं, लकीर फकीर नहीं है, हम सब समझते हैं सब कुछ नहीं। आगे तो बैठे एक आम के नीचे एक आम पर सिर में, अभी ये कुष्मांड कोड़ा उतार पड़ता तो पार क्रिया हो जाती, खत्म हो जाए तो क्या भाई ठीक है ठीक है। तो सिर में लागे जन माने ही माने बोले कहने से नहीं माने, किसी लागे जोर से तब कहीं माने वाला, अब क्या करोगे कैसे समझाओ, समझिए हम नहीं मानते। श्रुति अश्रुति के विषय में ये चांदी के वर्ग बनाते हैं, ये चमड़े से बनते हैं, कोई कहते हैं बैल के आंते होती है, उस आंत के चमड़े को नीचे रखकर ऊपर रख करके बांटते हैं तो उसे वो चांदी के वर्ग बनते हैं, सोने के चांदी के वर्ग बनते हैं। बनारस में बनते हैं फाटो फाटो, हमने सुना तो है क्या हो रहा है, हमारे जोर से चोटन लग रही है, हमने सुना है आप भी सुनो कोई बनारस में जाकर के, कैसे वर्ग बनाते हैं वो छोटा छोटा टुकड़ा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े चांदी के बनाकर और दो चमड़े बीच में दे देते हैं, ऐसे कर पांच सात दस देते हैं, फिर हथौड़े से मारते थे पटापट मारते, तो वो फैलते 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 वर्ग बन जाता है। तो चमड़ा आज तो मारकर चमड़ा, कलकत्ते में एक आदमी दुकान बनाई कि आप साहब मरी हुई गाय का चमड़ा हो तो उसी दूसरी बनावे, नहीं मिला। आप साहब मरने को देते पहले थ्री पैदा देखे, दुकान बंद करनी पड़ी। तो ऐसे मारी हुई गायों का चमड़ा अथवा मेरी बैल की आंत उसके ला करके वो बनाते हैं, तो ये वर्ग बहुत अशुद्ध होता है, अपने काम में नहीं जाना चाहिए, अपवित्र है, मानसिक अपवित्र है। पर रहो करने रहो नाम आचार को केवल कैरी नमा है, कैरी का मिर्ची का नींबू का आचार होता है, सोच आचार न विद्यते न सोचम न विचारू न सत्यम तेजु विद्यते, आचार उसमें रहेगा पवित्र एकादशी होती, उसकी एकादशी पवित्र 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 चली गई, सफाई रह गई सफाई। अरे पवित्र रखो, पवित्र कहने साफ हो गया, धो गया साफ हो गया, हड्डी को भी धोकर साफ रखो पवित्र हो गई, क्योंकि सफाई है। अरे सफाई और चीज है, पवित्र और चीज है, समझते ही नहीं अगाड़ी चल करके, ये ज्ञान नहीं रहेगा क्या सफाई होती है, क्या पवित्रता होती है, पवित्र में हम लोग बचते ही नहीं। ये बताया गीता के 16वें अध्याय में जहाँ आश्रम संपत्ति का वर्णन बताया, तो आश्रम पास में शुरू प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना विद्रासुरा न सोचम न विचार, यहाँ से शुरू होता है, क्या करना चाहिए न करना चाहिए जानते ही नहीं, सास सुनते नहीं, सुन सकते मानते नहीं, न सत्यम से न सोचम शुद्धि क्या होती है, खाने पीने में हमारे बहनों बातें अशुद्धि है, आज की छोरिया मानती नहीं, कॉलेज में पढ़ी हुई है हम इसे ही नहीं मानते, इनका इष्ट देव हो गया पश्चिम, पश्चिम देव जाए हो गया इनका आदर्श, अगर पश्चिम में सूर्य जाए तो अंधेरा हो जाए, अब अकल जाए तो क्या दशा होगी, आप विचार करो जरा, पश्चिम में सूर्य जाए तो अंदर रात हो जाती है ना, ऐसे भारत की अक्ल चलेगी पश्चिम में, अब अंधेरा नहीं तो क्या होगा, छोड़िए मानते नहीं, अशुद्धि शुद्धि क्या होती है, कहने पर भी नहीं मानती, क्या हो गया अशुद्धि क्या हो गया, अरे अंधे हो तो भुजंग रजस्वरा है, उसकी छाया पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है, अगर सरोवर तराई उसमें हाथ पैर दे दिया जाए तो जंतु ही जंतु हो जाते, मैंने देखा हुआ है, अगर गंगा जाड़ जाओ ठीक हो जाता है, प्रत्यक्ष बात है, छोटा छोटा लड़का बच्चा जन्मा है अगर उसको छाया पड़ जाए तो सब भरा उसका शरीर एकदम लाल बीमार हो जाता है, पापड़ बनाए हुए छाया पड़ जाए तो काले पड़ जाते हैं, ये जानती है बहना मानसी यदि बात, परंतु मानती नहीं, वस्तुओं पर असर पड़ता है, अब वही रोज भोजन वही 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 जड़ वही वही जड़ में वही रसोई में करती है, कृपा करो कृपा नाथ थोड़ी असुद्धि, हम लोग हमने रोटी खावे तुम्हारे घर की, हमारे को क्या पता कैसी कैसी बनी है किस तरह बनी है, तो मैंने क्या पहले हमारी बुद्धि बिल्कुल हो जाएगी तो ऐसी बातें कहाँ से लावेंगे, तो कृपा करो तो हमारी बुद्धि भी ठीक रहे, अंधा तो आप हो तब क्या करें, कृपा करो शुद्धि लाओ, तो शुद्धि का विचार ही नहीं है। नमस्कार को क्रिया क्या है, उपासना क्या है, क्रिया में उपासना का वर्ण कीजिए, उपासना उपनाम समीप में रहना, आसन लगाना वाला उपासना, परमात्मा के नजीक पहुंचे उसे परमात्मा को उपासना है। अरे क्रिया तो ये संसार है जिसमें क्रिया खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना, तो क्रिया में तो शक्ति नहीं है, अरे उपासना में संबंध भगवान के साथ होता है, क्रिया का संबंध संसार के साथ होता है, तो क्रिया तो निष्काम भाव अपना हो तब कल्याण करेगी, नहीं तो कर्मणा बंधते जंतु बंधता है। अरे उपासना तो किस तरह से की जाए, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से चार तरह के भक्त बताए हैं। भगवान का संबंध दुख से करे, चाहे धन के लिए करे, तो भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, तो भगवान का नाम लेना जप करना ये उपासना होती है और क्रिया संसार की होती है। क्रिया में मेरे से प्रश्न किया था, मैंने कहा क्रिया का तो कितना फल एक गुना है और भाव भीतर का उद्देश्य उनका है 15 आना और 3 पैसा भाव का, 1 पैसा क्रिया का। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया वो ये खाना पीना आदि क्रिया है। ये निष्काम अपना कोई संबंध नहीं तो कल्याण हो जाए, मैं क्रिया से कल्याण कैसे हो जाएगा? क्रिया तो आदि और अंत होता है, क्रिया आरंभ होती है अंत होता है, तो उसका फल अनंत कैसे हो जाएगा? अरे उपासना नित्य की होती है, कभी नाश हुआ नहीं, कभी नाश होगा नहीं, कभी नाश हो सकता नहीं, उसके साथ संबंध जुड़ता है उपासना से, तो अविनाश तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और बोध हो जाए ठीक, प्रेम हो जाए तब तो आनंद हो गया, प्रत्यक्ष में विलक्षण आनंद हो जाए। इससे कहते तीर्थ यात्रा के पुण्य और महत्व को बताओ। अब तीर्थ यात्रा तीर्थ नाम है पवित्र करने वाला, तीर्थ पुण्य कहो, पुण्य नाम पवित्र, ऐसे तीर्थ नाम पवित्र। तो तुम पवित्र बनो, जिन स्थानों में जाओ, पवित्र देश है, पवित्र स्थिति है, पवित्र जल है, जहाँ संत महात्मा ने तपस्या की है, ब्रह्म कुंड में गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी लंबी चौड़ी, फिर ब्रह्म कुंड में वहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, जहाँ तपस्या की गंगा जी पवित्र होगी, वहाँ की महान पवित्र करने वाली पवित्र हो जाए। संत जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ उनकी पवित्र हो गई, जहाँ पतिव्रताएं हुई है अनुसूया जी ने तपोबल आने मतलब गंगा जी की सर मंदाकिनी, तो वो तीर्थ बन गए। ऐसे जो संत हुए हैं, अवतार हुए हैं, पतिव्रताएं हुई है, ऐसे जो महापुरुष हुए हैं, तो उनके नाम से वो तीर्थ बने, तो वो पवित्र करने वाले हैं। वे देश पवित्र है, उन देशों में विलक्षण शक्ति है। हम तीर्थ यात्रा में गए थे तो औरंगाबाद है, उससे थोड़ी दूर पर एक गांव है भगवान शनि का, शनिश्वर जी का गांव है। वो शनिश्वर जी मूर्ति है, एक बड़ा पत्थर ऊंचा रखा हुआ है, हमने देखा दर्शन किया हमने, उनके ऊपर मंदिर नहीं बन सकता, कभी वृक्ष चाली हो जाए तो टूट जाती है, तो मंदिर बना टूट जाएगा, ठहरेगा नहीं, अरे थोड़ी है ऐसे ही। उस गांव में दरवाजा नहीं है, कुमार नहीं, हम गए देखा, हमारा कुपास पड़ा खूब, अगर हम घड़ी पड़ी है, इसी से सब पड़ी है, वहां ऐसी है कि कोई चोरी करे तो अंधा हो जाता है, संदेश जी कैसा है वहां पर, जो वो चोरी कर जा नहीं सकता, ऊपर कुमार दरवाजा बंद करने का दरवाजा नहीं है, खुला है गांव भर में। तब कैसे क्या उपासना होती है? अरे क्या क्या होती है देख लो, प्रतिष्ठा होती है। औरंगाबाद के पास में है शनिश्वरी का गांव, क्या मैंने देखा है, हम गए हैं घरों में गए, हम तो खुला पड़ा है कुपास का ढेर लगाया, मतलब अगर गड़ी पड़ी है चीजें पड़ी है सोरी, अब ताला कूठा किसी लगा हुआ है कपाट ही तो क्या उपासना हुआ है, क्या देवता हुआ है, अब कैसे समझावे? आदमी समझते नहीं, मानते ही नहीं, हम साधु को नहीं मानते, पितरों को नहीं मानते, भूत प्रेतों को नहीं मानते, अब बाप को भी नहीं मानना तो कैसे समझाओ उनको, बाप को किसी ने देखा तो है नहीं, बिन देखे मानते है नहीं, तो पता नहीं किस कारण से हो, क्या पता लगे कैसे समझाओ? अरे भाई माँ कहती, माता दे माता माने सो पिता, हमारी माँ कह दे, अरे माँ भी तो हम मानते ही है, याद है इतने भाई बहन बैठे हो, किसी को याद हो माँ को तो बताओ कि हमारे ऐसे जन्मा हूँ माँ से, मेरी माँ है, मानते हैं केवल। भगवान मानने की चीज ये है विचार की, तो संसार और जीवात्मा ये तो विचार का विषय है, परमात्मा विचार का विषय नहीं है। परंतु विचार विषय लगा कि जीव जगत और ईश्वर ये विचार का विषय है। अरे विचार का विषय तो वो होता है जो जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं।